نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم مختصر صحیح بخاری اس میں سے کتاب الجہاد کی کنٹینویشن ہے حدیث نمبر 1243 باب ہے ناقۃ النبیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ ناقہ کس کو کہتے ہیں فیمل کیمل کو اونٹ کی مونس عن انس رضی اللہ عنہ قال کان للنبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ناقۃ تسمى الادباء لا تسبق فجاء اعرابی على قعود فسبقها فشق ذلك للمسلمين حتى عرفه فقال حق على الله لا يرتفي شيء من الدنيا الا ودعه حضرت انس سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جسے ادبا یعنی اونٹنی کا نام کیا تھا ادبا یا اردو میں پڑھیں گے تو ازبا کہا جاتا تھا کوئی اونٹنی سے آگے نہ بڑھ سکتی تھی آخر ایک دیہاتی نوجوان اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اس سے آگے نکل گیا مسلمانوں پر یہ بات ناگوار گزری یہاں تک کہ آپ نے ان کی ناگواری پہچان لی اور فرمایا کہ اللہ پر حق ہے دنیا کی جو چیز بلند ہے اسے پست کر دے کیا پتہ چلا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بالآخر زوال پذیر ہے لہٰذا اس میں دلچسپی رکھنے کی بجائے آخرت کو بہتر بنانے کی فکر کرے کہتے نا ہر کمال کو زوال ہے اگر وہی ہمیشہ جیتتا رہے جو پہلے جیتا تھا تو لوگ اسی کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں اگلا ہے حمل النساء القرابة الى الناس فی الغزو جہاد میں عورتوں کا مردوں کے لیے مشقیں بھر کر لے جانا یعنی پہلے دور میں جب خواتین جنگ میں ساتھ جاتی تھیں تو وہ پھر لڑتی تو نہیں تھی راہ راست لیکن پھر خدمت کرتی تھی جیسے ہر کام کے کرنے کے دوران کچھ مینجمنٹ کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کہہ لیں کہ خواتین میدان جنگ میں براہ راست لڑنے کی بجائے وہ کام کرتی تھیں جو عموماً خواتین ہی صحیح کرتی ہیں عن عمر رضی اللہ عنہ انہ قسم مروتا من نساء المدینہ فبقی مرت جید فقال له بعد من عندہ یا امیر المؤمنین آتی هذا ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التي عندك يريدون ام كلثوم بنت علي جي فقال عمر ام سليط احق وام سليط من نساء الانصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فانها كانت تسفر لنا القرابة يوم احد حضرت عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے مدینہ کی عورتوں میں کچھ چادریں تقسیم کی تو ایک عمدہ چادر بچ گئی جو لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے کہا یا امیر المومنین یہ چادر رسول اللہ کی نواسی کو دیجئے جو آپ کی بیوی ہیں ان کی مراد ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ سے تھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ام سلیط اس سے زیادہ اس کی حقدار ہے ام سلیط ایک انصاری خاتون تھی جنہوں نے رسول اللہ سے بیعت کی تھی حضرت عمر نے مزید فرمایا کہ احد کے دن وہ ہمارے لیے مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی تھی تو آپ دیکھیے کہ اس میں کئی باتیں پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی کی بیٹی سے شادی کی تھی آج لوگ حضرت عمر اور علی کے بیچ میں اختلافات شو کرتے ہیں حالانکہ یہ چیز آپ کے سامنے ہے کہ اگر اختلافات ہوتے تو کیا ایک شخص اپنی بیٹی ان کو دیتا دوسری بات دیکھیے کہ حضرت عمر کی عمر دیکھیے ایج اور اس بچی کی عمر کیا ہوگی حضرت علی کی بیٹی ہیں تو حضرت علی خود کتنے چھوٹے تھے تو اس دور میں یہ عمروں کا فرق اس طرح نہیں تھا جیسے آج کے دور میں پھر اگلی بات حضرت عمر نے رشتہ داری کی بنیاد پہ اپنی بیوی کو کچھ نہیں دیا بلکہ مردم شناسی کی یعنی کسی کو پہچان کر عدل کے ساتھ دیا تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ پھر تاریخ ساز ہوتے ہیں یعنی ذاتی فوائد لینے کی بجائے عدل کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں پھر آگے ہے مدلوت النساء الجرحى فی الغزو دوران جنگ عورتوں کا زخمیوں کا علاج کرنا کیسا ہے ظاہر ہے کہ جنگوں میں زخم تو لگتے ہی تھے تو صحابیات مرہم پٹی کیا کرتی تھیں اس کی بات ہے اس میں عن الربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ قالت کنا نغزو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنسق القوم ونخدمهم ونرد الجرح والقتلى الى المدینہ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے ہمراہ جہاد میں جاتی تھیں مجاہدین کو پانی پلاتی اور ان کی خدمت کرتی تھیں नीज जख्मी और शोहदा को मदीना वापस लाने में मदद करती थी। तो क्या पता चला कि अजनबी औरत किसी दूसरी अजनबी मर्द का इलाज कर सकती है। इस हदीस से एक फिकही साबता भी अखज किया गया कि ज़रूरियात के पेश नज़र अशिया के इस्तेमाल में कुछ गुंजाइश निकल आती है। यानी आम हालात में तो एक औरत एक मर्द को छू भी नहीं सकती, लेकिन अब जंग के हालात हैं और अगर मर्द मरहम पट्टी करेंगे तो दुश्मन से कौन लड़ेगा। तो अगर ऐसे औरत में नर्सिंग का काम औरतें करती हैं तो फिर उसमें रुख्सत मिलती है। लेकिन अब इसे दलील बना के औरत और मर्द के फ़र्क को मिटाकर औरतों का हर उस काम पे जाना जिसको मर्द करते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। याद रखिए, ये मैदान जंग की बात है और अरबी का असूल है कि मजबूरी के वक्त पे, जो इस्तरार का वक्त होता है, उस पे बहुत सारी चीज़ें फिर रुख्सत हो जाती हैं। फिर यहाँ से आपको उनकी बहादुरी भी दिखती हैं कि ख़वातीन थी लेकिन जुरतमंद थी। मैदान जंग में ज़ख्मियों को पट्टी करना ये आसान काम नहीं है, तो अगर उनके अपने होश हवास कायम थे तभी तो वो ये काम करती ना। फिर आगे, अल हिरासतु फिल गस्वी व फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए पासबानी करते हुए पहरा देना। अन आयशत रदी अल्लाह अन्हा कालत कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहीरा फलम्मा कदिमल मदीनत काल लैत रजुलन मिन असहाबी सालिहन यखरुसुनिल लैलता इस समय ना सौत सिलाहन फकाल मन हाजा फकाल अना साद इब्नु अबी वक्कासिन जीतु लि अहरुसका वनाम النبي صلى الله عليه وسلم। हज़रत आयशा से ये रिवायत है कि रसूलुल्लाह एक रात बेदार रहे थे। जब मदीना पहुंचे तो फरमाया, काश के मेरे सहाबा में से कोई नेक मर्द आज की रात मेरी पासबानी करे। फिर अचानक हमने हथियार की आवाज़ सुनी तो आपने फरमाया, ये कौन है। इसने जवाब दिया, मैं साद बिन अबी वक्कास हूँ और आपकी पासबानी के लिए आया हूँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, यानी आराम किया। क्या पता चला कि हालात कैसे कैसे गुजरे हैं। वला नब्लुवन्नकुम बिश्शय मिन अल खौफ की ये दलील है कि ऐसे खौफ ज़दा हालात थे कि रात को आप सो नहीं पाते थे कि दुश्मन ना आ जाए। दूसरी बात यह कि इसबाब की फ्राहमी तवक्कुल के मुनाफी नहीं है, क्योंकि तवक्कुल तो दिल का फेल है जबकि इसबाब और ज़राए का इस्तेमाल अज़ार जवारिक से मुतल्लिक है। यानी अल्लाह के नबी को अल्लाह पे तवक्कुल था, इसके बावजूद आपने अपनी हिफाजत का बंदोबस्त किया। और इसमें ज़ाहिर है कि हज़रत साद बिन अबी वक्कास की खूबी भी है कि उन्होंने किस तरह अपने आप को पेश किया, क्योंकि किसी के लिए रात को पहरा देना अपनी जान को ख़तरे में भी डालने का काम है, लेकिन नबी सल्लम की जान की हिफाजत उनको अपनी जान की हिफाजत से ज़्यादा प्यारी थी। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु अन्निन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, तैस अब्दुल दीनार व अब्दुल दरहम व अब्दुल खमीसती इन ओतिया रदिया व इल्लम योता सखीता तैसा वन तकसा व इज़ा शीका फला इन तकशा तू बाली अब्दिन आखिजिन बी इनानी फरसी ही फी सबीलिल्लाह अश असा रासुहु मुगब्बरतिन कदमाहु इन कान फिल हिरासती कान फिल हिरासती व इन कान फिस साकती कान फिस साकती इन इस्ताज़न लम यूज़न लहू व इन शफा लम युशफा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया कि दिरहम और दीनार और लिबास के परस्तार हलाक हो जाएं, यानी दुनिया के पीछे लगने वाले, इन्हें दिया जाए तो खुश हैं, ना दिया जाए तो नाराज़ हैं। अल्लाह करे ये हलाक हो जाएं, सरनिगू होकर गिर पड़ें, अगर कांटा चुभे तो कोई ना निकाले। और इस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसने जिहाद के लिए घोड़े की बाग पकड़ी है, इसका सर प्रगंदा और पांव खाक आलूत हैं। अगर वो पासबान हो तो पासबानी करे, और अगर लश्कर के पीछे हिफाजत पर मामूर हो तो लश्कर के पीछे रहे। अगर वो जाने की इजाज़त मांगे तो इजाज़त ना मिले, अगर वो किसी की सिफारिश करे तो कबूल ना की जाए। क्या पता चला, अपने काम से दिलचस्पी रखने वाले वाकई गुमनाम और खामोश तबा होते हैं, जिसको हमारे यहाँ क्या कहते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। यानी काम करने वालों को फिक्र ज़्यादा काम की होती है, वो अपनी जान नहीं छुड़ा रहे होते। ऐसे लोगों को कुर्सी की चाहत और शोहरत की तलब नहीं होती। दुनियादारों के यहाँ इनकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन अल्लाह के यहाँ इनका बहुत ऊंचा मुकाम होता है। और दुआ कीजिए कि अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, अल्लाह हमें ऐसे ही लोगों में करे। बहुत बातें करने वाले अक्सर काम में सही नहीं होते। आगे है अल खिदमत फिल गज़वी, जिहाद में खिदमत करने की फजीलत। वन्हु रदी अल्लाहु अन्हु काला खरच तुमा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला खैबरा अखदुमुहु फलम्मा कदिमन नबीयु राजियन व बदा लहू ओहदुन काला हाजा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। हज़रत अनस बिन मालिक से ये रिवायत है कि रसूलुल्लाह के हमराह आपकी खिदमत के लिए खैबर गया था, फिर जब आप वहाँ से वापस आए तो तोहद पहाड़ नज़र आया, तब आपने फरमाया ये पहाड़ हमको दोस्त रखता है और हम इसको दोस्त रखते हैं। क्या पता चला कि जबल ओहद का रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना हकीकत पर मबनी है, क्योंकि अल्लाह ताला जमादात में भी मोहब्बत भरे जज्बात पैदा करने पर कादिर है, जैसा कि रसूलुल्लाह की जुदाई में खजूर का तना सिसकियां भरकर रोने लगा था। क्या हम इस तरह महसूस करते हैं? किसी नेकी से महरूमी पे हमारे दिल में इस तरह तकलीफ आती है? और दूसरा, इसमें मौजज़ात भी है ना। अब आज आप और मैं तो नहीं पहाड़ों की बातें सुनते या जानते, तो ये आपकी नबूवत का एक मुंह बोलता सबूत है कि बेजान चीज़ों में भी अल्लाह ताला जो असर पैदा करते थे वो भी आपको पता चल जाता था। अन अनस रदी अल्लाहु अन्हु काला कुन्ना मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरुना ज़िल्लल्लसी यस्तज़िल्लु बिकिसाईही व अमल्लज़ीना सामु फलम यामलु शैयन وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعْثُوا الرِّقَابَ وَأَمْتَهَنُوا وَعَالَجُوا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ کے ہمراہ تھے تو ہم لوگوں میں سے سب سے زیادہ سائے میں وہی شخص تھا جس نے اپنی چادر سے سایہ کر لیا تھا۔ اس دن روزے داروں نے نہ تو کچھ کام کیا، मगर जिन लोगों ने रोज़ा न रखा था उन्होंने ऊँटों को उठाया, काम काज किया और फरीज़ा खिदमत अंजाम दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया आज रोज़ा न रखने वाले सवाब ले गए। मालूम हुआ कि दौरान सफ़र रोज़ा रखना अगरचे जायज़ है, ताहम इस दिन रोज़ा न रखना बेहतर है ताकि बवक्त ज़रूरत दूसरों की खिदमत बजा लाने में कोताही ना हो। यानी बाज़ हालात में एक नेकी मुश्किल हो जाती है दूसरी की वजह से, तो फिर ऐसे हालात में इंसान वो काम करे जो वक्त की ज़रूरत हो, यानी नीड ऑफ दी आवर को देखे। बाद जब इंसान शुक्र करता है अच्छा भी मेरा रोज़ा है तो मुझे कोई काम तो नहीं कहेगा ना, तो अगर हालात उस वक्त ऐसे हैं कि आपकी ज़रूरत है तो आप अपनी ज़ाती नेकी के ऊपर मुतमईन है, तो बेहतर ऐसे वक्त में कि इंसान इज्तमाही नेकी के मौके पर नफिल ज़ाती नेकियों को पीछे डाल दे। फ़राइज़ तो नहीं छोड़ेगा कोई, लेकिन नफिलों की बात हो रही है इधर। फिर आगे है फदलु रिबात यौमिन फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में एक दिन पहरा देने की फजीलत। अन सहल इब्ने साद साइदी रदी अल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा रिबात यौमिन फी सबीलिल्लाह खैर मिन दुनिया व मा अलैहा व मौदी सौत अहदिकुम मिन अल जन्नत खैर मिन दुनिया व मा अलैहा वर रौहतु यरूहुहल अब्दु फी सबीलिल्लाह विल गदवतु खैरु मिन दुनिया व मा अलैहा। ऐसी हदीसों को याद किया करें, इससे रग़बत भी आती है और इंसान के दिल में ये शौक भी पैदा होता है कि मैं भी ऐसी नेकियों को करूं। क्या तर्जमा है? सहल बिन साद से ये रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह की राह में एक दिन का पहरा देना दुनिया व मा फीहा यानी दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर है, और जन्नत में तुम में से किसी के कोड़ा रखने की जगह तमाम दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर है, और सुबह या शाम के वक्त अल्लाह की राह में चलना सारी दुनिया व माफीहा से बेहतर है। अब देखिए कि ये कैसी बात है। इसी तरह ये लिखते हैं कि बाज़ दफ़ा जब लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे होते हैं तो संगलाह दुश्वार गुजार पहाड़ों की चोटियों पर सफ़ेद रीछ जो थे वो नकलो हरकत पर नज़र रखते थे, यानी अल्लाह ताला ऐसे लोगों की हिफाजत करवाता है जो अल्लाह के रास्तों में निकलते हैं। मन इस्तान बिद्दुआफ़ाई व सालहीन फिल हर्बी जिसने लड़ाई में कमज़ोर और नेक लोगों के ज़रिए से मदद चाही। अन साद इब्ने अबी वक्कास रदी अल्लाहु अन्हु काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल तुनसरून व तुरज़कून इल्ला बिद्दुआफ़ाइकुम। इसको पढ़ें और इसको याद करें कम अज़ कम ये छोटा हिस्सा टुकड़ा। हल तुनसरून सब पढ़ें इल्ला बिदुआफाइकुम। क्या तर्जमा है? कि जो तुम्हारी मदद की जाती है और तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है वो तुम्हारे कमज़ोर लोगों की वजह से है। ये अल्फाज आपने उस वक्त इरशाद फरमाए जब साद बिन अबी वकास के दिल में ख्याल आया कि वो शुजात और बहादुरी में दूसरों से बढ़कर हैं। तो रसूलुल्लाह के इस इरशाद गरामी का मतलब ये था कि उनमें तवाज़ो और फरोतनी के जज्बात परवान चढ़े। ये मतलब है कि कमज़ोर कौन होते हैं घर में, बीमार भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, जिनकी ना बस चले, जो किसी भी तरह हैंड टू माउथ हैं, हैंडीकैप्ड हैं। तो ऐसे लोगों की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए और ऐसे लोगों को अपने ऊपर बोझ नहीं समझना चाहिए। और किसी का ये सोचना जो काम मैं कर सकती हूँ वो कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा तो कोई करता नहीं, तो उनको भी इस हदीस से सबक लेना चाहिए कि अपनी सलाहियतों पर मान ना करें। इंसान जो दिया है वो अल्लाह ने दिया है, जो देता है वो ले भी सकता है, करें क्या, उन नेमतों से फ़ायदा उठाएं। عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان يغزو قيام من الناس فيقال من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح عليه ثم ياتي زمان فيقال فيكم من صحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح عليه ثم ياتي زمان فيقال فيكم من صحب صاحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح। इसमें अगले वक्तों की खबरें दी गईं। अबू सईद से ये रिवायत है, अबू सईद खुदरी से, कि रसूलुल्लाह से बयान करते हैं कि आपने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग जब जिहाद करेंगे तो कहा जाएगा कि तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोहबत याफ्ता हो, यानी आपके साथ रहा हो। जवाब दिया जाएगा हाँ, फिर इसके ज़रिए दुआ करने से फतह हो जाएगी। फिर एक ज़माना आएगा कि लोग पूछेंगे क्या तुम में से कोई ऐसा भी शख्स है जिसने रसूलुल्लाह के सहाबा की सोहबत उठाई हो। जवाब दिया जाएगा हाँ, इसके ज़रिए से जब दुआ मांगी जाएगी तो फतह होगी। फिर एक ज़माना आएगा कि पूछा जाएगा कि तुम में कोई ऐसा शख्स भी है जिसने रसूलुल्लाह के सहाब की सोहबत उठाने वालों को देखा हो। जवाब दिया जाएगा हाँ, तो इसकी दुआ के वास्ते से फतह होगी। अच्छा, अब ये क्या है, खैर बरकत किसके लिए? सहाबा कराम, ताबईन निज़ाम और तबा ताबईन, तीन जनरेशन जिनको खैरुल करनु करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम से अल्लाह के नबी ने एक हदीस में बयान किया। इनके हिस्से में आज तो कोई बादशाह ऐसा नहीं जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ता हो, बल्कि आज की लड़ाइयाँ हुकूमत के बचाव और कुर्सी के तहफ़ के लिए, इल्ला माशाल्लाह। तो क्या पता चला कि जब तक इखलास वाले लोग मौजूद होते हैं उनकी दुआओं से पूरी उम्मत को फ़ायदा होता है। आज तहरीद अल रमी, तीर अंदाजी पर आमादा करना। रमी किसको कहते हैं? तीर लगाने को। अन अबी उसैद रदी अल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا اذا اكسبوكم فعليكم بالنبل। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि बदर के दिन जब हम कुफार के सामने सफ आरास्ता हुए और उन्होंने भी हमारे मुकाबले में सफ बंदी की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वो लोग तुम्हारे करीब आ जाएं तो फिर इन पर तीरंदाज़ी करना। तो क्या पता चला कि नबी सल्लम को अल्लाह ने हर तरह का कमाल दिया था। आप फ़नून हर्ब में भी महारत रखते थे। आपने फरमाया कि दुश्मन को देखते ही घबरा कर तीरों की बारिश ना करो, बल्कि जब देखो कि दुश्मन निशाने की जद में है तीर मारो। ज़ाया नहीं करनी चाहिए अपनी गोलियाँ, बाज़ दलाइल गोलियों की तरह होते हैं, बर मौका उनको इस्तेमाल करना चाहिए। आगे है अल मजिन्नु व मई यत तरीसु बितुरसी साहिबी, जो शख्स अपनी या साथी की ढाल से तहफ़ हासिल करे। عن عمر رضي الله عنه قال كانت اموال بني النذير في مما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصه وكان ينفق على اهله نفقه سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والقراع عده في سبيل الله। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि बनु नज़ीर का माल इन मालों में से था जिनको रसूलुल्लाह ने अपने रसूल के लिए गनीमत करार दिया था, और मुसलमानों ने इसे हासिल करने के लिए इस पर घोड़े और ऊँट न दौड़ाए थे, लिहाजा ये माल रसूलुल्लाह के लिए ख़ास था। आप इसमें से एक साल का खर्चा अपने घर वालों को दे देते थे और जो बाकी बचता इसे घोड़े और हथियार खरीद कर जिहाद के सामान की तैयारी करते। तो इमाम बुखारी का मतलब क्या है कि ढाल और दीगर हथियारों का इस्तेमाल तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत से हथियार खरीद कर सामान्य जिहाद की तैयारी करते थे। तो आज अगर हुकूमतें ऐसे पे माल लगाती हैं, अगर आज हुकूमतें इसलाह खरीदती हैं तो ये चीज़ खिलाफ सुन्नत नहीं है। अन अली रदी अल्लाहु अन्हो काला मा रईतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युफद्दी रजुलन बाद असादिन समेतहु यकूलू उर्मी फिदा का अबी व उम्मी। हज़रत अली से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, मैंने हज़रत साद के अलावा किसी को नहीं देखा कि इस पर रसूलुल्लाह ने अपने माँ बाप कुर्बान किए हों, इन्हीं के मुतालिक आपको ये फरमाते हुए सुना कि ऐ साद तीर मारो, तुम पर मेरे माँ बाप फिदा हों। और ये कब कहा था? ग़ज़वा खंदक के मौके पे हज़रत ज़ुबैर के लिए इस्तेमाल किए थे। शायद हज़रत अली को इसका नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ से पता चलता है कि जो अल्लाह के नबी के सामने अच्छा काम करता था तो आप उसको अप्रिशिएट भी करते थे, दुआ भी देते थे। बाप मा जाफी हिलयत सुयूफ, तलवार पर सोने चांदी का मुलम्मा करना, यानी उस पर जिसको आप कहते हैं गोल्ड प्लेटेड प्लेटिंग करना, यानी उसके ऊपर उसका पानी चढ़ा देना। अन अबी उमामत रदी अल्लाहु अन्हु लकद फतहल फतूहा कौमन मा कानत हिलयत सुयूफिहिम अज़्ज़हबा वलल फिद्दत इन्नमा कानत हिलयतहुम हुमुल उलाबिया वल आनुका वल हदीद। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि ये सब फतूहात इन लोगों ने हासिल की हैं जिनकी तलवारों पर सोने चांदी का मुलम्मा ना था, बल्कि इनकी तलवारों पर चमड़े रोंग और लोहे का मामूली सा काम होता था। अल्लाह अकबर, यानी कम असबाब वालों ने अल्लाह के रस्तों में काम किए। और जो लोग सारी ज़िंदगी ही कहते हैं मेरे अभी हालात ठीक नहीं, मेरे पास असबाब नहीं, तो कर भी नहीं पाते। बल्कि अबू उमामा की रिवायत में एक बात आती है कि जब फातेह कौम हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आई तो इनकी तलवारों पर चांदी का मुलम्मा था, तो हज़रत अबू उमामा इन्हें देख कर बहुत नाराज़ हुए। ये हदीस बन के, ये आप सोच रहे होंगे कि सोने चांदी का क्या चक्कर है, तो जैसे आज जब हम अपने पर्स के ऊपर कोई चीज़ लगा लें, कपड़ों पे लगा लें एक खूबसूरती के लिए, तो अरब अपने हथियारों पे सोना चांदी बल्कि सोने चांदी की तलवारें लेकर आते थे, यानी एक किस्म की रौनत और खूबसूरती और अपने आप को बड़ा साबित करने की बातें थी। तो बहरहाल यहाँ से ये पता चलता है कि असबाब थोड़े भी हों, तलवारें टूटी भी हों, लेकिन पीछे हाथ अगर मजबूत हों तो अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही लोगों में कर ले। ठीक है, चलिए, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।